उसमें बतलाया गया कि जिस प्रकार से कस्तूरी और उसके गंध में कोई भी अंतर नहीं है, जिस प्रकार अग्नि और उसकी दायिका शक्ति में भी कोई अंतर नहीं है, वैसे ही राधा जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उपमा दिया, उसके संबंध में हम लोगों ने यह भी बतलाया कस्तूरी और उसका गंध यद्यपि एक है तो भी उसमें अंतर है, और वो अंतर ऐसा है कि अचिंत्य है। कोई भी किसी भी चीज की शक्ति शक्ति शक्तिमान से अभिन्न रहने पर भी उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है, वैशिष्ट होता है। जैसे कस्तूरी और उसका गंध यदि दोनों एक ही होता तो कस्तूरी यहाँ रहने पर उससे 50 गज दूरी पर उसका गंध चला जाता है, कस्तूरी तो जाती नहीं है तो गंध कैसे चला जाता है। इसलिए उसमें कुछ अंतर भी है और कुछ उसमें अंतर नहीं है, भिन्न भी है। वैसे ही आग, आग से दायिका शक्ति एक है किंतु होने पर भी आग यहाँ रहती है और 5-7 गज 10 गज की दूरी पर आदमी खड़ा रहता है तो उसको ताप मिलता है, तो आग तो चली नहीं जाती किंतु उसका ताप तो चला जाता है। कभी कभी मंत्र और औषधियों के प्रभाव से आपकी शक्ति को संकुचित कर दिया जाता है और उसमें आग का ताप नहीं लगता। एक ये नीच जाति के जो द्राविड़ इत्यादि होते हैं कोल भी, उनमें एक उत्सव होता है चरक उत्सव, उसमें आग जला देते हैं 10-15 गज तक, काफी उसमें कंडे या लकड़ी जला देते हैं और उनका पुरोहित आगे आगे उस आग में चलता है, उसके पीछे पीछे 8-10 वो चलते हैं और तनिक भी उनको आग नहीं लगती, उसको बांध देते हैं आग की शक्ति को। इसलिए उससे भिन्न भी है वो, अभिन्न भी है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है शक्ति से शक्तिमान अभिन्न, शक्ति शक्ति मतो रभेद इत्यादि कहा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सवेरे इन तत्व के संबंध में हम लोगों ने आलोचना की। अभी हमारे पूज्यपाद महाराज जी अधिक देर तक नहीं बैठ सकते यहाँ, इसलिए सभी लोग उन्हीं के वचनों को कुछ सुनने के लिए आतुर हैं, यही बोलेंगे। इसके बाद में फिर महाराज जी बोलेंगे या शुभानंद और सब ब्रह्मचारी लोग भी बोलेंगे। अभी कुछ बाद महाराज जी बोलेंगे।
Thank you. आज श्री राधाष्टमी तिथि ब्रजमंडल तिथि विशेष भाव उद्यापित हो भारत विभिन्न
आप तो हिंदी बोल सकते हैं
नहीं ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে এই রাধাষ্টমী আজ প্রতিপালিত হচ্ছে। কোন কোন স্থানে রাধা তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা চলছে। আজ রাধা বলে কোন ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন না, এরূপ সমালোচনাও শুনতে পাই
আমরা।
আসাম প্রদেশে মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায় ওরা বলেন যে রাধা একটা কল্পিত নাম, এই কল্পনা নিয়েই রাধা নামের সৃষ্টি, সুতরাং এটা হওয়ার উচিত নয়। এর পিছনে ওদের যেসব যুক্তি আছে সেসব যুক্তি আমাদের কিছু কিছু শোনা আছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে রাধাজির নাম বহির্ভক্ত হয়েছে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নহেন এবং কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নহেন, এর বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও রয়েছে। তথাপি তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাস্ত্র আলোচনার অভাবেই তারা ওই কথা বলে। রাধাষ্টমী এমনই একটা তিথি যে তিথিকে অবলম্বন করে আমাদের সাধন ভজনের সব কিছু নির্ভর করছে। শাস্ত্র বলছেন রাধাজির আনুগত্য না হলে কৃষ্ণ ভজন সম্ভব হবে না বা কৃষ্ণ সেবা সম্ভব হবে না। আমরা গৌড়ীয় গুরুবর্গ এবং গোস্বামীগণের নিকট থেকেও ঠিক এমনই কিছু কথা শুনতে পেয়েছি যার মুখ্যার্থ হচ্ছে গুরুবর্গের আনুগত্যে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবালা, নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে গৌর সুন্দরের সেবালা, নিতাই গৌরের আনুগত্যে রাধা গোবিন্দের রাধা নিয়ন্ত্রের সেবা প্রার্থী, এ কথাগুলো আমরা শুনে আসছি। এবং এই আনুগত্যের কথা আপনারা হয়তো বলবেন যে কৃষ্ণদেরই বিশেষ চিন্তাধারা, তা হলেও সাধন ভজনের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে রয়েছে। জগৎগুরু শ্রী সরস্বতী ঠাকুর তিনি তার নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করবার সময়ে তাঁর একান্ত অনুগত জনগণকেও একটা বিশেষ উপদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মূল আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে থেকে আপনারা সাধন ভজন করবেন। তো মূল আশ্রয় বিগ্রহ কথাটা লক্ষ্য করেছেন তিনি রাধারানী, তিনি মূল আশ্রয় বিগ্রহ। সূর্যবত নারায়ণ মহারাজ তিনি শক্তি শক্তিমান তত্ত্বের কথা কিছু আলোচনা করেছেন সকলবেলায় বলছি। শক্তি ছাড়া শক্তিমানের কোনো পরিচয় নাই, আবার শক্তিমান ছাড়াও শক্তির কোনো পরিচয় নাই, এ কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। শক্তি শক্তিমত তত্ত্ববস্তু শক্তিমান তত্ত্ব, কিন্তু শক্তিমান শক্তি ছাড়া তো নাই, তাই তত্ত্ববস্তু যখন লীলা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন তখন সেই দুই একই তত্ত্ব তিনি দুই মূর্তিতে প্রতিভাত প্রকাশিত হচ্ছে প্রকটিত হচ্ছে। একমেব সচ্চিদানন্দ রসাদি রূপম তত্ত্বম দ্বিধা আবির্ভূতম, যার অর্থ করা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ ঐচ্ছে দুই একই স্বরূপ, লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই। সেই অখিল রসামৃত সিন্ধু রসবৈষ তত্ত্ব হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁরই বিশেষ অংশ বললে ভুল হবে, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রাধার সত্যি, যাকে বাদ দিলে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকছে না। গৌড়ীয় গুরুবর্গ নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, শ্রী দ্বৈত দাস, দ্বৈত শব্দ প্রিয় এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, রাধা দ্বৈত শব্দটা ব্যবহার করেছে, কারণ রাধারানীকে বাদ দিলে যেন কৃষ্ণের কোনো পরিচয় থাকে না, এইরূপ রাধারানী। বহু ব্যক্তি কিছু বাহাদুরি করবার জন্যে আজকাল বলে থাকেন ভাগবতে রাধারানীর কথা নেই, কেন নেই বা কীভাবে আছি থাকলে সে নিয়ে কোনো আলোচনার ক্ষেত্র নেই। অথচ কথাটা আসছে শাস্ত্রকারগণের যা উদ্দেশ্য সেটা আলোচনা করলে আমরা পাই যে রাধা তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব, নির্গুঢ় রহস্য। সেই জন্যেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হয়তো তাকে খানিকটা লুকিয়েছি, বিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। তাহলে বর্ণনাই এমন কথা নয়, বর্ণনা আছে। রাধাম আদায় হৃদয়ে তত্ত্বায় ব্রজ সুন্দরী কথাটা রয়েছে, আবার শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন যাকে যার জন্য সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে ভাগবত, যেখানে বলছেন অনয়া রাধিত নূনম ভগবান হরিশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত জামনায়তরা, শ্লোকটা উল্লেখ করেছেন। ঠিক এই তত্ত্বদর্শনটা বোঝাবার জন্য বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী তিনিও ঠিক অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অংশারী রবি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম রাধাম আদায় হৃদয়ে তত্ত্বায় ব্রজ সুন্দরী। শাস্ত্রে যেসব কথাগুলো আছে যদি ঠিক ঠিক তার অর্থবোধ প্রয়োজন হয় আমাদের, তাহলে গুরুবর্গের আনুগত্য প্রয়োজন আছে। সেই আনুগত্যের দ্বারাই তার অর্থ পরিস্ফুট হচ্ছে আমাদের কাছে। তার ভাগবতে যে বিচার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সূত্রাকারে রাখছেন সেই ব্যাখ্যাই এখানে কবি জয়দেব পরিষ্কারভাবে দিয়ে যাচ্ছেন। কবি জয়দেব একজন সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি বৈষ্ণব কবি এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈষ্ণব, যার কথা চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর একান্ত ভক্তগণের সঙ্গে আলোচনা করছেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি করণামৃত শ্রীজিত গোবিন্দ বর্ণনা রয়েছে। সেই রকম কথাগুলো চৈতন্য মহাপ্রভু তার একান্ত অনুগত জনগণের সঙ্গে আলোচনা করছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যে কথাটা জগৎকে শিক্ষা দিতে এলেন এটা বলছেন অনর্পিত চর ব্যাপার চিরাদত্তম শব্দ ব্যবহার করেছেন, দেওয়া হয়নি যেটা, তা সেই জিনিস দিতে এসছেন তিনি। গোপনীয় ব্যাপার তা রাধা তত্ত্ব এতই গোপনীয় যে সকলের কাছে সেটা সবসময় প্রকাশ করা যায় না। অথচ রাধাকে ছাড়া কৃষ্ণের কোনো পরিচয় নেই সে কথাও বলছি। রাধার দাসী কৃষ্ণ সর্ববিধে বড় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক জায়গায় বলছি কৃষ্ণকে না রাধার দাসী, সেখানেও আনুগত্যের কথা রয়েছে। যদি কৃষ্ণকে বুঝতে হয় তারা রাধা রানীর আনুগত্য না করলে হবে। এখন এই অনুভূতি অনুভবটা কীভাবে আসবে, সদ্গুরুর কৃপা প্রভাবে, গৌরী গোস্বামীবর্গের কৃপা প্রভাবে এই জিনিসটা হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হতে পারে। ধাম দর্শন আমি আমার নিজের চেষ্টা করতে পারি না, সেখানেও আনুগত্যের প্রয়োজন হচ্ছে। গৌরধামের আনুগত্যে ব্রজধামের দর্শনাদির ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রীগৌড় মণ্ডলভূমি যেভা জানে চিন্তামণি তার হয় ব্রজভূমি বাস কথাটা রয়েছে। সুতরাং সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু এবং গৌর সুন্দরের আনুগত্যেই রাধা গোবিন্দের সেবা প্রাপ্তি এবং গৌরধামের আনুগত্যেই ব্রজধামে সুষ্ঠু দর্শন এবং উপলব্ধি। ওখানে গৌরধামের দর্শনের ক্ষেত্রেতে স্বয়ং শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি বলছেন ভ্রমিগ দ্বাদশ, ওখানে বলছেন গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হিরব আমি প্রণয়ী ভগত। আবার ব্রজধাম দর্শনের বেলায় সেখানে দেখা যাচ্ছে নর্তন ঠাকুর মহাশয় বলছেন ক্রমিক দ্বাদশ বনে রসকেরই যে স্থানে প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া সুধাইব জনে জনে ব্রজবাসী গণস্থানে নিবেদিব চরণে ধরিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই আনুগত্যের প্রয়োজন রয়েছে। শুদ্ধ ব্রজবাসী প্রণয়ী ভক্ত যারা তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক জগতের বিচার থেকে, তারা এই জগতে থাকলেও মাইক জগতের মাইক কোনো বস্তু তাদের স্পর্শ করছে না করে না, এখানে থেকেই তারা অপ্রাকৃত ভাব বিভাবিত হয়েই সাধন ভজন করে যাচ্ছে। তাদের আনুগত্য হলে অপ্রাকৃত শ্রী ব্রজধামের মাধুরী আমরা দর্শন করতে পারি, তা না হলে অসম্ভব। সেই যে রাধারানী যিনি বৃন্দাবনেশ্বরী তাঁকে তাঁর কৃপা কটাক্ষ লাভ করতে গেলেও ততদিন গণের কৃপা প্রথমে প্রধান সখী নর্মসখী প্রিয় নর্মসখী মঞ্জুরী ইত্যাদির আনুগত্য না হলে রাধারানীর কৃপা পাওয়া যাচ্ছে না গুরুবর্গের শ্রীমুখ থেকে, এটা আমরা শুনতে পাই। যারা গোস্বামীবর্গ খড়গোস্বামী অন্তত তাদের ক্ষেত্র বিচার করা হয়েছে, তারা সব मंजूरी है। अर्जुन प्रियंचन विनोद मंजूर, अर्जुन प्रमोद मंजूर, अर्जुन नयन मंजूरी नयन मणि, अर्जुन कमर मंजूरी, ये सब परिचय हलो तादेर सिद्ध स्वरूपेर परिचय तारा दिए गेछे। आमरा तो किछु जानी ना, यदि गुरु वैष्णवगण किछु आमादेर जानान तत्त्व दर्शन तबे आमरा किछु जानते पारि। तो तारा निजेदेर परिचय एइभावे दिए गेछे। বাহ্য শরীর পুরুষ শরীর রয়েছে, কিন্তু অন্তরে তাদের সিদ্ধ স্বরূপের যে পরিচয় দিয়েছেন সেটা অন্যরকম। তা যে রাধারানীর সেবা প্রাপ্তির জন্য এত চেষ্টা, সেই রাধারানী কি বস্তু সেটা উপলব্ধি করতে গেলে গুরুবর্গের বিশেষ কৃপা প্রয়োজন, তা নাহলে সে তত্ত্ব উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। স্বয়ং ভগবান এই জগতে এসে যে লীলা বিলাস করছে, সে তত্ত্ব উপলব্ধি করতে গেলে গৌড়ীয় গুরুবর্গের আনুগত্য করে। এক জায়গায় বলছেন, গুরু গোস্বামী তার সিদ্ধান্ত শরীরে কি কীর্তনটা, সনাতন গোস্বামীর ক্ষেত্রে বলছেন কি, প্রভু সনাতন কবে সঙ্গে লইয়া যাবে, শ্রীরূপের পাদ পদ্মে মনমরে সমর্পিত
লোকনাথ,
হ্যাঁ লোকনাথ, প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লইয়া যাবে। না, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কার কাছে কি প্রার্থনা করছি আমরা। গুরু গোস্বামীর কাছে একটা প্রার্থনা রয়েছে, সনাতন গোস্বামীর কাছে একটা প্রার্থনা রয়েছে, আর জীব গোস্বামীর কাছে সিদ্ধান্ত চিত্ত যায় জল। তাহলে প্রত্যেকেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য তাদের কাছ থেকে কৃপারূপে আমরা প্রার্থনা করছি। এই জিনিসগুলো দপ্তরে চৌরি দপ্তর হয়েছে তাদের পদকর্তা রয়েছে, তাহলে সব জিনিসটাকে নিয়ে একটা কিছু হচ্ছে আমাদের গুরুবর্গের বিভিন্ন রকমের বিচারধারা চিন্তাধারা সামঞ্জস্য একটা ক্ষেত্রে হচ্ছে। সেই সামঞ্জস্য নিয়েই আমরা সাধন ভোজনে পথে অগ্রসর হব, সেই কথাই শিক্ষা দেওয়া আছে। সেবার মধ্যে বিরোধ নেই, সেবার মধ্যে মাধুর্য আছে, সেবার মধ্যে মিলন আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেন বিরোধের মতো কিছু মনে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্র আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে দুটো পক্ষ গ্রুপ, একটা রাধা পক্ষ আর একটা চন্দ্রাবলী পক্ষ, কিন্তু দুটো পক্ষই তুলনামূলকভাবে আলোচনার বিষয়। আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ এরা তার রাধা পক্ষেরই পক্ষপাতী, সেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিচারের মধ্যে তার লেখনী পদের মধ্যে আমরা পাই এরকম, যেখানে বলছেন রাধা পক্ষ ছাড়ি যে জন সে জন যেভাবে সেভাবে থাকি, আমি তো রাধিকা পক্ষপাতি সদা কৌ নাহি হেরি তাকে। এমনি দেখলে মনে হচ্ছে যেন একটা ঝড়া বিবাদ, কিন্তু তা নয়, এর ভিতরে বৈশিষ্ট্য আছে। এখন সেই বৈশিষ্ট্যটুকু কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেটা গুরুবর্গই তারাই ভালো জানেন, সেই জন্যই কথাটাও এখানে উঠেছে, কথাটা এখানে ওইরকমই এসেছে। রাধিকা চরণ পদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম যতনে যে নাহিয়া রাধিল, রাধা পদাং কিত ধাম বৃন্দাবন যার নাম তাহা যে না আশ্রয় করিল। তা কথাগুলো যে বলছেন এসব কথারই তাৎপর্য রয়েছে, এর প্রত্যেকটি শব্দই राधा तत्व के खूब विस्तृत भावे सुंदर भावे प्रकाश कर सुतरां राधा रानी की जानते गेले बुझते गेले तदनुगत যে তত্ত্ব বস্তু আছেন তাদের আনুগত্য প্রয়োজন আছে, আমরা তাকে চিন্তা করে নিয়ে জানতে পারি। সেই যে রাধা তত্ত্ব নিগুড় রহস্য, এটা বুঝতে গেলে ভগবান ভগবানের একান্ত ভক্তগণের আশ্রয় পাই, তা নয় ওটা উপলব্ধির বিষয় হয়। বৈষ্ণব বলতে গেলে বৈষ্ণব তো অনেক আছে, বিষ্ণু সেবক মাত্রই বৈষ্ণব, নারায়ণ তত্ত্ব থেকেই বৈষ্ণবত্ব শুরু হয়েছে বিষ্ণু তত্ত্ব থেকে। কিন্তু রাধা গোবিন্দের যে উপাসনা, সেই উপাসনার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে গেলে গুরুজন গুরুবর্গের আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে গোস্বামীগণের বিশেষ কৃপা প্রয়োজন আছে। রাধাষ্টমী তিথি এটা আলোচনা করতে গেলে প্রতি জীব হৃদয় যদি রাধা তত্ত্ব উপলব্ধি হয় তাহলেই কৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি আমাদের আসে। রাধারানী তত্ত্ব না জানলে পরে কৃষ্ণ তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হবে না, সেইটাই আমি বলা আছে। আজ রাধাষ্টমী তিথিতে গৌড়ীয় গুরুবর্গের নিকট তথা আমার সতীর্থ গুরুবর্গের নিকট আমার বিশেষ প্রার্থনা, তারা আমায় দয়া করুন, কৃপা করুন, যদি কোনোদিনও জন্ম জন্মান্তরে কোনোদিন তাদের আনুগত্যে রাধা তত্ত্ব আমার উপলব্ধির বিষয় হয়, তবেই আমার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভজন সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। আমি এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য সমর্পণ করেছি।
इस संबंध में कुछ बतलाया उन्होंने, बंगला भाषा में बतलाया, मैं संक्षेप में हिंदी में उसका सार कुछ आप लोगों को सामने प्रकट कर रहा हूं। राधा जी की वंदना शास्त्रों से कर करके उन्होंने बतलाया कि जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ठाकुर जी विश्व में एक अपूर्व आचार्य हो गए। आज उन्हीं की कृपा से विश्व में सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु का प्रचार और कृष्ण नाम और राधा का नाम भागवत इत्यादि का प्रचार विश्व में सर्वत्र हुआ। आज वो महापुरुष नहीं रहते तो कहीं भी ये सब चीजें नहीं हुई। उन लोगों के और उनके अनुकंपा पात्र आचार्यों की कृपा से हम लोग भी यहाँ पर एकत्र बैठ करके कुछ अनुशीलन कर रहे हैं। मूल में वही है, प्रभुपाद जी उन्होंने एक शिक्षा में कहा है, जगत में हम आए हैं, जगत में रहने पर हमें बहुत तरह के अभाव भी हैं, कुछ दुख भी हैं, किंतु यदि सारा जीवन इसी में कटा दिया, केवल अभावों की पूर्ति में और दुख को दूर करने में, ये बुद्धिमानी का कर्तव्य नहीं है। समस्त विश्व के जितने भी प्राणी हैं इसी दो काम में लगे हैं, हमारा दुख दूर हो जाए और हमारा अभाव पूर्ति हो जाए। किंतु ये न तो प्रारंभ में कभी हुआ है और न कभी होगा, ये कभी संभव पर नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब लोग जितने भी दुख हैं और जो कुछ भी है उसके अंतर्गत हम एक मूल आश्रय विग्रह के अंतर्गत में हम मूल जो सेवा विग्रह है उनकी हम सेवा करें। यहाँ पर मूल आश्रय विग्रह कौन है? श्रीमती राधिका जी मूल आश्रय विग्रह हैं और मूल सेव्य विग्रह कौन है? कृष्णचंद्र है। तो मूल राधिका जी के आश्रय में यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम लोग एकदम मूर्खों से भी मूर्ख हैं, हमारा जीवन व्यर्थ गया। किंतु ऐसे राधा जी की सेवा करना, उनके आश्रय में कृष्ण की सेवा करना, ये सहज बात नहीं है, बहुत ही कठिन है। जगत में कोई चीज दुर्लभ है तो ये राधा जी का अनुगत्य और उनके अनुगत्य में कृष्ण की सेवा सबसे दुर्लभ वस्तु है। कुछ लोग कहते हैं, इन्होंने पूर्व पक्ष किया कि श्रीमद् भागवत इत्यादि में आराधा का नाम नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, अपने को पूरे पंडित समझते हैं और मूर्खों में सबसे अंतिम सीमा तक वो गधे हैं। शास्त्र नहीं पढ़ा, भागवत नहीं पढ़ा और अपने को भागवत का पंडित समझते हैं और कहते हैं जी भागवत में ही नहीं है राधा जी का नाम, उनको खोजने पर कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? कभी देखा नहीं भागवत, जो भागवत सफेद या काला कैसा होता है और मंतव्य करने लगते हैं जो भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं है। राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में और समस्त शास्त्र में, यहाँ तक कि वेद परिषद सब में है, किंतु उसको देखने वाला चाहिए। श्रीमद् भागवत का उन्होंने दो प्रसंग लेकर के बतलाया, एक तो बतलाया गीत गोविंद जी का और एक बतलाया श्रीमद् भागवत का। हम लोगों ने भी सवेरे इस चीज को वहां पर बतलाया था। श्रीमद् भागवत में विशेष करके दशम स्कंद के गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, वेणु गीत और एक और कोई गीत, ये चार प्रसिद्ध हैं। इसमें कोई भी एक लाइन नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में राधा जी का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत परोक्ष प्रिय हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का केवल समय था और श्रीमद् भागवत प्रकाश करना जरूरी था। तो श्रीमद् भागवत को प्रकाश करना है और उनको केवल 7 दिन का समय है। परीक्षित महाराज जी 7वें दिन उनको परलोक में चला जाना है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का पारायण करने लग गए, उनको पढ़लाने। किंतु एक बात थी, श्रीधर स्वामी ने शायद टीका में कहा है, जहां वो श्रीमती राधिका का नाम करेंगे या करते हैं,
राधा नाम मात्रे न षड्मांसिकी
कुछ संदेहवादी व्यक्ति इसमें भी संदेह करते हैं कि शास्त्र में यह है कि नहीं, किंतु संदेह की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग जो विचार करेंगे उसमें कुछ संदेह की बात हो सकती है, किंतु भ्रम विप्रमाद कर्णापाठव विप्रलिप्सा इन चारों दोषों से रही, जो हमारे आचार्य श्रील जीव गोस्वामी इत्यादि हैं, श्रीधर स्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं और सब आचार्य लोग हैं, इनमें कोई दोष नहीं। इसलिए हमारे विचार करने में ये दोष हो सकता है भले ही, किंतु उन लोगों को प्रमाणिक मान करके हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो परमार्थ राज्य में हम कारी गति हो ही नहीं सकती। इसलिए श्रीधर स्वामी भी एक आचार्य हैं और महाप्रभु जी ने तो वल्लभाचार्य को यहाँ तक कह दिया कि स्वामी की जे न माने वेश्या करी जानी, इसलिए स्वामी की बात तो जरूर मानना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की आराध्या आराध्य कृष्ण नहीं है, उनकी आराध्या श्रीमती राधिका जी, और उनके प्राणनाथ वो कृष्ण है। मदीशा नाथत्वे ब्रजबल्पिन चंद्र ब्रजबनेश्वरी नाथत्वे इत्यादि ये सब बतलाया गया। विशेषकर हमारे संप्रदाय में राधिका जी ही परमात्म आराध्य हैं और उनके प्राण प्रियतम कृष्ण है, इसलिए हृदय में उनको छिपा करके रखते थे। आराधन्य का नाम जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं कहना चाहिए, यहाँ तक कि गुरु जी का नाम भी ऐसे नहीं कहने उच्चारण करना चाहिए, हाथ जोड़कर ओम विष्णु पाद पूर्वक जैसा उनका नाम है इस प्रकार से श्री इत्यादि लगा करके बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से दोष होता है और जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं बोलना चाहिए, बिना किसी श्रद्धा पूर्वक श्री इत्यादि के लगाए तो गुरु जी का नाम बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए श्री जी का नाम बहुत ही गुरु तात्पर्यपूर्ण है। यदि कहीं वो राधा नाम उच्चारण करते तो 6 मास की मूर्छा उनको हो जाती, तो फिर महाभाग श्रीमद भागवत रह जाता, वो पाठ ही नहीं होता, फिर उसका प्रकाशन नहीं होता और परीक्षित महाराज जी का भी जीवन सफल नहीं होता। जहाँ जहाँ पर उन्होंने परोक्ष रूप में भी श्रीमती राधिका का नाम लिया, जैसे इन्होंने वो श्लोक बोला अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्नो विहाय प्रीतो जाम अनतरः। कृष्णचंद्र जी राज से कुछ अंतरहित हुए, कारण ये था कि कुछ गोपियों में सौभाग्य मद आया और एक कोई गोपी थी विशेष, उसमें उसको हुआ मान। सौभाग्य मद को दूर करने के लिए, प्रशमन करने के लिए और मान का प्रसाधन करने के लिए, प्रसाधन माने क्या, कृपा करके उसके मान को रखने के लिए, प्रसाद करने के लिए, और सौभाग्य मद को क्या करने के लिए, दबाने के लिए, वो क्या हुए राष्ट्र अंतर ध्यान। कुछ लोग ऐसा समझते कि अकेले चले गए, अकेले नहीं गए, अपनी प्राण प्रियतमा श्रीमती जी को साथ लेकर के गए। ये पीछे से गोपियों ने देखा कृष्ण के दोनों चरणों के बीच में एक गोपी का चरण है, ये किसका है, उसी में गोपियां कह रही हैं कुछ, जो पहचानती हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई राधा पक्ष वाली, और चंद्रावली पक्ष वाली जो राधा जी के चरणों को नहीं जानती हैं उन्होंने देख करके कहा अन्य आराधित उन्होंने, इस गोपी ने ही कृष्ण की सबसे अधिक आराधना की है, जिससे कि सब गोपियों को छोड़ करके और इसी गोपी को अपने साथ लेकर के गए, इसलिए ये सबसे सौभाग्यवती है और इसी का मान प्रसादन करने के लिए गए। पीछे से इस सब का वर्णन है। यहाँ पर जो ही ये श्लोक उच्चारण किया उन्होंने अनयाराधितो, इसके द्वारा आराधना हुई, बस झट एकदम उनका भाव विभोर हो गए वो, और प्रसंग एकदम बदल गया, वहीं पर अध्याय समाप्त हो गया एक श्लोक के बाद ही, और फिर वो प्रसंग अब दूसरे रूप में चला। एक जगह और उन्होंने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में उन्होंने बतलाया है स्वधामने राधसा स्वधामने रंशते नमः, वहां पर भी राधसा, ये राधसा है
राधा के साथ
मैंने तृतीया विभक्ति अतः तो राधा जी के साथ में अपने धाम में रमण करते हैं। अब राधसा का अर्थ क्या लगाएंगे, कुछ लोग कहते हैं राधा जी कृष्ण की आराधना करती थी इसलिए उनका नाम हो गया राधा। किंतु ऐसा नहीं, राधा जी से ये आराधना शब्द हुआ। राधा जी कृष्ण के प्रति जो कार्य करती हैं उनके प्रसन्न करने के लिए, उसका नाम आराधना है। नहीं तो आराधना शब्द से यदि कहेंगे तो सब भक्त लोग उनकी आराधना करते हैं। चंद्रावली भी आराधना करती है और जितनी सखियां हैं, सखा हैं, माँ जसोदा हैं और सब भक्त लोग उनकी आराधना करते हैं तो सभी का नाम हो जाएगा राधा। ऐसा नहीं, इसलिए उनके एक आंशिक जो वो क्रिया करती हैं इसलिए रूढ़ रूप में, रूढ़ शब्द के रूप में राधा जी हैं और उनका अर्थ इस रूप में जो कि आराधना करते हैं। यथार्थतः में राधा शब्द की व्युत्पत्ति है कृष्णेन आराधिता, कृष्ण ही जिनकी आराधना करते हैं, कृष्ण के द्वारा जो शब्द में आराधित होती हैं उनका नाम श्रीमती राधिका जी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो है ही है राधिका जी का नाम, कापी के द्वारा कहा, कहीं काश्चित कहा, कभी कोई गोपी कहा, किंतु परोक्ष रूप में उन्हीं के लिए कहा। परोक्षवाद जो होता है रस के लिए, रस विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कोई किसी के विषय में ये कहा जाए, नाम नहीं लिया जाए और क्रिया के द्वारा उसको सब प्रकार के उनके गुणों को बतलाया जाए, एक बतलाओ, एक व्यक्ति है 14 वर्ष की उम्र है, श्यामल वर्ण का है, मुख में बंसी है, उसके बाल घुघराले हैं अलके और सुंदर बंसी से सबको मोहित कर देता है, बताओ उसका नाम क्या है? कोई बतला सकता है उसका नाम क्या है? ऐसा हम समझते हैं कि कोई नहीं है जो उसका नाम नहीं बतला सकता। सभी जानते हैं कि उसका नाम ही श्याम सुंदर अथवा कृष्ण है, नाम बतलाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही भागवत में राधा जी का ऐसा गुण वर्णन किया गया है जो वह गुण राधा जी के अतिरिक्त और किसी पर लागू नहीं होता है, इसलिए राधा जी का नाम प्रति छत्र में, प्रति श्लोक में किसी न किसी रूप में जरूर व्यक्त हुआ है। मूर्ख लोग इन चीजों को देख नहीं पाते। दूध में सर्वत्र घी है किंतु अंधे नहीं देख पाते, आंख वाले जो अंधे होते हैं नहीं देख पाते हैं जी कैसे दूध में प्रत्येक अणु अणु में घी है जरूर है। सरसों के प्रत्येक कण कण में, जितने भी सरसों हैं उसमें तेल जरूर है, जो नहीं देखते हैं वो मूर्ख हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ हमने प्रसंग बतलाया, जहाँ इन्होंने उल्लेख किया और श्लोकों को बतलाया उसमें सर्वत्र है। एक बात और उन्होंने बतलाया, वृंदावन के राष्ट्र में पंचायती राष्ट्र थी, उसमें साधन सिद्धा सिद्धा राधा जी की काय विवाह इत्यादि जितने प्रकार की गोपियां हैं उसमें सम्मिलित हुई, इसलिए राधा जी को प्राय मान होता था, इसलिए राष्ट्र ठीक से नहीं चल पाती। इसलिए गोवर्धन में जो राष्ट्र हुआ वो स्पेशल राष्ट्र, उसमें राधा जी के ही केवल गण थी, वहां पर मान इत्यादि का कोई विशेष नहीं, वहां पर और बड़ा गंभीर रूप से वहां पर आ। तो उसमें भी वर्णन करते हैं राधा जी का जो मान होता है हेतुक और अहेतुक होता है, कोई कारण हो और न हो इसमें कोई बात नहीं, वहां तो कारण हो, वहां बिना कारण के ही मान हो गया, ये और भी बड़ी विचित्र बात है। वहां तो वहां पर ऐसे हो गया, तो वहां पर कहते हैं कि राधा जी राष्ट्रनी जब चली गई तो कृष्ण जी सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी को अंक में पकड़कर और उस राष्ट्र अंतर्ध्यान हो गए। ये प्रसंग बतलाए, इसका भी कारण है, चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा था स्वरूप दामोदर जी से, जे राधा जी को सब गोपियों के सामने छोड़ करके राधा जी को लेकर के जाते तब तो मैं समझता जे राधा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, चोरी करके यदि ले गए हों तब तो इसे स्पष्ट मालूम नहीं होता जो राधा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तब तो मालूम होता जो वो भी गोपी श्रेष्ठ है, उनसे चोरी करके और तब गए। किंतु ऐसा नहीं, सबके सामने देखती रही गोपियाँ और उनके सामने राधा जी को लेकर के और आश्रम अंतर ध्यान होकर के चले गए और अकेले में उनकी चोटी घुटना से लेकर के और सब कुछ का हुआ। वही चंद्र सरोवर के पास में ये जहाँ पर कि चंद्र चलना भी भूल गए और एक जगह स्थिर हो गए, उनका रास देखते रह गए। और ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा की आयु की रात्रि वहीं पर पूरी बीत गई और चंद्र वहीं पर देखते रह गए, इसलिए वो चंद्र सरोवर वहाँ पर ये रास हुआ था। उसमें राधा जी को लेकर के चले गए सब गोपियों को देखते देखते, इसलिए राधा जी श्रेष्ठ हैं। और श्रीमद् भागवत में, वेदों में, उपनिषदों में, वेदों में राधा उपनिषद है अथर्ववेद के अंतर्गत में, आज हमने बतलाया था, उसी में राधा जी का जीवन चरित्र उसमें वर्णन किया है प्राकृत। ये कृष्ण के बाम भाग से राधा जी और दाहिने भाग से सदा शंकर वो
गोपीश्वर,
गोपीश्वर महादेव वहीं पर प्रकट हुए। और प्रकट होते ही धा माने दौड़ी, राम माने रागपूर्ण, अर्थात तो अनुरागपूर्ण होकर के कृष्ण की तरफ में बड़ी जोर से धावित हुई, इसलिए उनका नाम हो गया राधा। इसलिए फिर का इन्होंने बतलाया ये रूप सनातन और जीव गोस्वामी का पृथक पृथक वैशिष्ट्य दिखलाया। रूप गोस्वामी के हैं हम चाहेंगे क्या, अपने अपने गुरु जी से प्रार्थना।